स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग भगवान वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के अंतर्भूत उद्योग पर्व और उद्योग पर्व में स्थित सनत सुजात उप पर्व पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में दूसरा अध्याय चल रहा है, जहां धृतराष्ट्र महाराज सनत कुमार जी से मौन के विषय में जिज्ञासा करते हैं। उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं कि मौन अपना स्वरूप ही होता है। उस मौन को इंद्रिय संयम रूपी मौन से प्राप्त किया जा सकता है। विषयों से दूर रह करके अथवा विषयों के सामने यदि वे जाते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा कवच पहन के जाते हैं, जिसे कल बताया, माला पहन लिया, चंदन लगा लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, इससे भी उन विषयों से बच करके वे उस मौन भाव में रहा करते हैं। दूसरा प्रश्न धृतराष्ट्र ने पूछा कि कोई व्यक्ति पाप करता हुआ यदि वेदों का अध्ययन करता है तो क्या वह पाप से लेपायमान होता है अथवा लेपायमान नहीं होता है। भाई सत्संग करता हुआ भी अपने आचरण को यदि कोई न सुधारे तो क्या उस आचरण का जो पाप है, दुष्कृत का पाप का, दुष्कृत कर्मों का जो फल है, उस फल से वह लेपायमान होगा अथवा लेपायमान नहीं होगा। सनत कुमार ने दो टूक जवाब दिया। एनम माने ऐसे व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति पाप करता हुआ ऋग्वेद आदि का अध्ययन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को, जो निषिद्ध आचरण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को वेद आदि पाप कर्म से रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। पापात कर्मण न त्रायन्ते, पाप कर्मों से वे रक्षा नहीं करते हैं। न ते मिथ्या ब्रवीमहम, मैं तुमसे लाग लपेट की बातें नहीं करता, मतलब मिथ्या में झूठ तुमसे नहीं बोलता। देखो सत्य सत्य ही है। ये अध्यात्म शास्त्र त्रेता युग में जितना परमार्थ था उतना ही परमार्थ द्वापर युग में भी है, और उतना ही परमार्थ कहाँ है, कलयुग में भी है। इसके स्वरूप में बदलाव नहीं है, परिस्थितियों से अध्यात्म में बदलाव नहीं आ सकता है, ध्यान देना। क्योंकि अब आप कहो कि नहीं, त्रेता युग में विषय दुख रूप थे, नहीं दुख रूप थे, आज विषय क्या हो गए हैं, सुख रूप हो गए हैं। तो क्या नमक कल खारा था, ओ नहीं कल क्या था, मीठा, या क्या बोलोगे, खारा आज मीठा हो गया। भाई जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आज विषयों के साथ रहते हुए आपको सुख मिल जाएगा। इसका नाम ही लिख दिया विषय, क्या लिखा नाम, विषय, यह माने हुआ जो विषय है, जो विश्व स्वरूप है उसका नाम क्या है। अब विश्व को अमृत आप बनाना भी चाहो तो कैसे बनेगा बताओ, फिर भी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है भाई, न ते मिथ्या ब्रवीम हम, मैं तुम्हें किसी बहकावे में नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें, यदि मैं तुम्हारा कोई पुरोहित होता, क्या जजमानी मेरी चलती होती, तो कभी न कभी तुम्हारे अनुसार है मुझे बोलना। भाई सीधी सी बात है, द्रोणाचार्य उनके यहां नौकरी करते हैं, किसके यहां? दुर्योधन के यहां। तो दुर्योधन के गलत सही में भी वो क्या है? साथ हैं। और जो उनके यहां नौकरी नहीं कर रहा है, उनकी दक्षिणा नहीं ले रहा है, वो क्यों झूठ बोलेगा? क्यों उनकी चाट करता, उनकी हां में हां क्यों मिलाएगा? तो हमारे सनत कुमार जी महाराज ऐसे हैं कि न ते मिथ्या भवी महम, मैं तुमसे मिथ्या बात करी नहीं। अब सुख कोई कहे नहीं नहीं बाहर सुख है, और सारा शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर रहा है सुख बाहर नहीं है, सुख कहां है? भीतर है। और आपके अपने अनुभव में भी आ रहा है भाई, यदि सुख बाहर होता तब बाहर ही दौड़ते रहते, मत बैठते, अंदर न बैठते, कभी न बैठते, सोते ही न। आप न सो न, क्योंकि आप सो गए तो आपका जो सुख का विषय है ये माला कोई उठा ले जाएगा? सुख का विषय आपके भोग की वस्तुएं हैं, कोई दूसरा भोग सकता है? भाई आप सो गए, आपकी माला मैं पहन लेगा तो क्या करोगे बता? तो फिर भी आप कर, जिसको पहनना हो पहने, जिसको ले जाना हो ले जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कहां जाना है? सोना है। तो सोने में क्या सुख है बताओ? और जो सोने में सुख मिलता हो किसका सुख है? और फिर भी कहो नहीं सुख हमें विषय में है, तो भाई कैसे हम मान लेंगे? इसलिए शास्त्र का एक बहुत लक्ष्य आप समझना, प्रवृत्ति का साध्य निवृत्ति है, प्रवृत्ति साधन है। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का पर्यवसान है, प्रवृत्ति का अंतिम पड़ाव कहां है? निवृत्ति है। और निवृत्ति का अंतिम पड़ाव बोलो भाई निर्वृत्ति, निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने शांति, ध्यान देना। दो है, प्रवृत्ति है पहला, प्रवृत्ति का अंतिम पर्यवसान है अथवा अंतिम पड़ाव क्या है? निवृत्ति। प्रवृत्ति की निवृत्ति माने वैराग्य, समझ लेना, निवृत्ति माने वैराग्य। और वैराग्य का अंतिम पड़ाव निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने शांति है, निर्वृत्ति माने शांति, जहां वृत्ति है ही नहीं, व्यापार मन का संकल्प कोई, क्योंकि अभी भी छोड़ने की वृत्ति है, निवृत्ति में भी छोड़ने की वृत्ति है। और जहां पर छोड़ने और पकड़ने दोनों की वृत्तियां शांत हो गई हैं, वह अवस्था क्या है? निर्वृत्ति। तभी शास्त्र कहता है न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृत तत्व मानुषु। अब इस शाश्वत सिद्धांत को कोई उल्टा करना चाहे तो क्या उल्टा हो सकता है? क्या क्यों भाई कहो, क्यों नहीं हो सकता है? निवृत्ति का प्रवृत्ति कर लो, निवृत्ति से कहां जाओ? प्रवृत्ति में जाओ। तो शास्त्र ही कहता निवृत्ति से प्रवृत्ति भाई नहीं हो सकता है। क्यों? आत्मानम चेद विजानियात अयम अस्मित पुरुष किम इच्छन कस्य काम आया शरीर मनुष्योज्वरेत। यही बताया, यहां शास्त्र बता रहा है आत्मानम चेद विजानियात, चेतन यदि, यदि इसलिए बता दिया कि थोड़ा दुर्लभता है, यदि किसी को आत्मा को जान लिया, आत्मानम चेत विजानियात, क्या जाना? अयम अहम अस्मि, मतलब अयम अस्मित पुरुष है, अस्मि क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता अहम होगा। अब तो व्याकरण पढ़ते को बंद कर दिया, व्याकरण पढ़ते ना शनिवार के दिन बंद हो गया क्या? अच्छा चल रहा है। तो व्याकरण में अस्मि है, तो अस्मि है कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होगा? अहम होगा। तो अयम अहम अस्मि, यहां क्या हो जाएगा, अयम यह अहम अस्मि, यह मैं ही हूं। जिस परम ब्रह्म की खोज में कर रहा हूं वह परम ब्रह्म परमात्मा कौन हूं, मैं ही हूं। तो जब मैं ही हूं हो गया तो मैं क्या हुआ, नित्य तृप्त हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा नित्य तृप्त है, आनंद रूप है, तो मैं भी नित्य तृप्त आनंद रूप हूं। तो किम इच्छन, अब किस भोग की कामना रहेगी, किस मिथ्या प्रपंच की कामना आपके भीतर रहेगी, किस वस्तु को आप पाना चाहेंगे, किस वस्तु को पाने के लिए आप क्या होता है छल प्रपंच राग द्वेष खींचातानी करेंगे, कष्ट काम आया है, भोक्ता भाव ही समाप्त हो गया, किसकी कामना के लिए, क्योंकि उस अवस्था में भोग्य और भोक्ता दोनों मिथ्या हो जाते हैं, भोग्य और भोक्ता दोनों ही क्या हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। तो भोग्य भी मिथ्या और भोक्ता भी मिथ्या, तो दोनों झूठे हो जाएंगे। तो किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसरति, फिर इस शरीर को हम क्यों पीड़ा देंगे, किसके लिए हाय तोबा करेंगे। तो व्यक्ति निर्वृत्ति माने शाश्वत शांति की प्राप्ति कर लिया करता है। तो ये शाश्वत सिद्धांत है मेरे भाई, इस सिद्धांत को आप बदलना भी चाहे तो बदल नहीं सकते। चलो यहां आते हैं, हम मूल पाठ में आते हैं। तो शास्त्र क्या कर कैसे नहीं रक्षा करता है, तो उदाहरण दिया, ऐसे पापी को छंदांश वन वेदाह, कैसे पापी को जो मायावी हैं, मायावी माने धर्म ध्वजी ढोंगी, माया में जो वर्तमान रहने वाले मतलब मिथ्याचारी हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है, ऐसे व्यक्ति को वेदाह ब्रिजनात न तारयंती, वेद पाप से तारते नहीं हैं, वेद पाप से मुक्त करते ही नहीं हैं। तो वेद क्या करते हैं, कहते चुपचाप छोड़ के चले जाते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कि नीडम शकुंता यू है, जैसे कोई पक्षी होवे जब उसके पंख आ जाते हैं, जात पक्षा पंख उत्पन्न हो गए तो वह घोंसले को छोड़ करके निकल जाता है, तैसे पापी व्यक्ति का वेद भी छोड़ करके चुपचाप निकल जाते हैं। कभी कभी आप देखना लड़ाई हो जाए, आपने कोई अपराध किया, हमारे साथ आप माने कोई व्यक्ति जा रहा हो और जाते वक्त कुछ अपराध आपने किया, किसी को छेड़ दिया, कुछ कर दिया, जो भी है चोरी कर लिया या कुछ किया, तो पिटाई किसकी होगी, जिसने किया है उसकी पिटाई होगी, नहीं पिटाई होगी, तो जो साथ चल रहा है वो वहां रुकेगा चुपचाप खिसक लेगा, क्योंकि उसके साथ रह गया बीमार खाएगा ही खाएगा, उसके पाप का भागी वह बनेगा ही बनेगा, इसलिए वह व्यक्ति चुपचाप वहां क्या करता है, बल्कि साथ रहता हुआ भी बोलता मैं नहीं जानता हूं भाई इसको, मेरा तो इसके साथ कोई परिचय है ही नहीं। उसी प्रकार से वेद ने ऐसे पापी व्यक्ति का साथ यूं छोड़ देते हैं जैसे एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़ करके उड़ जाता है, तो ऐसे पापी व्यक्ति का साथ वह वेद भी देते नहीं है। अरे आपको ईश्वर हमारे पाप में भी हमारा साथ देगा, क्यों देगा भाई। तो धृतराष्ट्र के मन में एक संशय आ गया, जो आपके भी मन में संशय आता है। छठा श्लोक, न चेद वेदा वेद विदम त्रातुम शक्ता विचक्षण अथ कस्मात् प्रलापोयम् ब्राह्मणानाम सनातन। कहते हैं चेद माने यदि, वेद विदम वेद को जानने वाले जो व्यक्ति हैं, वेदविद हैं, ऐसे व्यक्ति को वेदा वेद प्रातुम न सकता, रक्षा करने में समर्थ नहीं होते, तो अथवा ने फिर कस्मात् प्रलापोयम, किस कारण से यह प्रलाप है, वेद अध्ययन रूप आदि प्रलाप किस लिए, ब्राह्मणानाम ब्राह्मणों के लिए, वेदों का अध्ययन आदि जो प्रलाप किया जाता है, वेद का अध्ययन करना चाहिए, वेदो नित्य मधीयताम, आज जो बार बार कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदि तभ्यम, जब ये सब उसकी रक्षा कर ही नहीं पाते हैं तो सनातन ये नियम क्यों बनाया गया है कि ब्राह्मणों को वेद का अध्ययन करना चाहिए, ये मेरे मन में संशय हो रहा है। आपके मन में संशय तो है नहीं है, जब ये हमारी पूजा पाठ जप तप उपवास कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, हुआ ना संशय। तो इस संशय का समाधान अगले मंत्र में है, अगले मंत्र के पहले भगवान शंकराचार्य थोड़ा अवतरण लिखते हैं। भवेद अयम प्रलापो यदि एव एस वेदार्थ स्यात्, जैसा वेद का मतलब आप समझते हो, यदि वेद का उतना ही मतलब होता तो पक्का वेद प्रलाप होता, व्यर्थ हो गया होता। लेकिन जैसा आप वेद का मतलब समझते हो ना, वैसा वेद का मतलब है ही नहीं। आजकल हम लोगों ने वेद का मतलब ही मात्र समझ लिया है, तोते की तरह रट लो बस। हमने सही बताया, आप लोग वो करते हो क्या बोलते हैं, अभिषेक करते हो नहीं करते, रुद्राभिषेक करते हैं, बताओ पंडित जी से पूछो जो करा रहा है उसका अर्थ मतलब है मालूम, उसका शाब्दिक अर्थ कहो भैया, एक एक अक्षर का अर्थ बता दो तो उसको मालूम है। आप जो कर रहे हो पंडित जी बोल रहे हैं तो पंडित जी बोलते हुए उनके शब्दों के साथ आपकी क्या उस आकार की भावना बन रही, क्या बस एक परंपरा चल रही है कि हमें अभिषेक कराना है बस। भाई इतने तक ही नहीं सीमित होना है, मैं बार बार कहता हूं। और आजकल तो एक बार वहां कराया था इन लोगों ने अभिषेक का, क्या बोल गए क्या नहीं बोल रहे कोई मतलब ही नहीं है, शब्द का एक भी। चलो चुप, शब्द का एक भी उच्चारण क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या किस प्रकार का भाव बनेगा। और जब तक मेरे भाई भाव नहीं बनेगा तब तक संस्कार नहीं बनेगा, और जब तक संस्कार नहीं बनेगा तो संस्कारानुरूप तब तक फल की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो भाव है उस भाव के साथ यदि पूजा करोगे, उस भाव के साथ आप ध्यान करोगे तो उस ध्यान का एक संस्कार बनेगा और उस संस्कार से आपको दिव्य लोकों की भी प्राप्ति होगी। लेकिन हमने एक रूटीन वर्क बना लिया, क्यों रूटीन वर्क, हाँ रूटीन वर्क इतना करे पाप से रक्षा नहीं करेगा, जो पाप कर रहे उससे रक्षा नहीं करेगा लेकिन उतनी देर पाप होने से बचा लेगा। हाँ मिलेगा वो कर रहा श्रद्धा, वही संस्कार जो बना, जो भी आपने ये आपके मन में एक भाव तो आ गया ना कि मैंने एक यज्ञ किया, तो यज्ञ किया तब एक मन में ये भी भावना आएगी उस यज्ञ का जो फल हमें स्वर्ग है, तो मृत्यु काल में आप ऐसी भावना करोगे कि मैंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, उस अश्वमेघ यज्ञ के फल स्वरूप हमें स्वर्गलोक प्राप्त होगा, स्वर्गलोक में इंद्र होगा, अप्सराएं होंगी, धुआं धुआं होगा, धुआं नहीं क्या होता है वो बर्फ के फाग फाग जैसे दिखते ना टीवी में देखते देखते हो, तो जैसी भावना करोगे वैसा ही एक सपना देखना शुरू कर दोगे, और उस सपने में आप अपने आप को इस शरीर को छोड़ने के बाद आप दूसरे लोक में अपने आप को पाया हुआ मानोगे। तो उस भाव का तो महत्व तो है, लेकिन भाव पूर्वक होए तब महत्व है, लेकिन आजकल भाव भी नहीं हो रहा है, आजकल कंपटीशन होने लगा है। उधर देखो जगराते होते हैं रात्रि जागरण वाले, इन्होंने 50,000 खर्च किया तो हम कम थोड़े हैं, इसी मोहल्ले मैं भी कराऊंगा और मैं 1,00,000 का जागरण कराऊंगा। हमारा जागरण का लक्ष्य उपासना नहीं है, दूसरे की दृष्टि में लगता है कि मैं बहुत बड़ा क्या हो गया हूं भक्त हो गया हूं, लेकिन हमारे उस जागरण का लक्ष्य उपासना नहीं बल्कि दूसरे को नीचा दिखाना लक्ष्य है। बताओ उस जागरण का कोई फल मिलेगा क्या। इसलिए यहां कहते हैं कि वेद का जो तात्पर्य आप समझते हो वैसा तात्पर्य है ही नहीं। वेद का जो वास्तविक अर्थ है, शास्त्रिक अर्थ क्या है, मीमांसक लोग ऐसा मानते हैं, स्वर्गादेह परम पुरुषार्थ मोक्षाख्य, मीमांसक लोग स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं, और वही वेद का मतलब है। तो भाई वेद के कर्म उस भावना से भी करते हो तो आपको उस फल की भी प्राप्ति हो जाती है। दूसरे लोग क्या मानते हैं, वेद के अनुसार कर्म करो और कर्म का फल भी दिखाते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, अब बाद में स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग का फल सुनने के बाद उस स्वर्ग के फल को अनित्य बता देते हैं, अनंदा नामते लोका अंधेन तमसा वृता, वह जिस लोक की प्राप्ति आप करोगे वह लोक आनंद वाला नहीं है, अनंदा आनंद से रहित लोक है, लोक है, और इस लोक में तांसते प्रत्याभिगक्षित, यज्ञ आदि कर्म करने के बाद मर करके जाओगे तो दिन जाने के बाद फिर से वहां से वापस आना प्रत्याभिगक्षन्ति, मरने के बाद जाओगे, जाकर के जब तक पुण्य भोग रहेगा तब तक भोगोगे, अब भोगने के बाद फिर से वापस आना पड़ेगा। तो इन सब कर्मों का निरूपण करके फल बता करके वहां से वैराग्य दिलाने के लिए प्रयोजन बताते हैं। भाई देखो पहले बताया प्रवृत्ति किसके लिए है, निवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं होती है। हमारा मन शुरू में ही निवृत्त नहीं हो पा रहा है, संसार के विषयों को देख करके बार बार आकर्षित होता था, तो शास्त्र कहता है कि ठीक है तुम्हें यदि आकर्षण लग रहा है तो उस आकर्षण में तुम जाकर के देख लो और देख लो कि तुम्हें उसमें कितना सुख मिला, परीक्ष लोकान कर्म चितान, शास्त्र भी तो कह रहा है ना कर्म से प्राप्त इस लोक की क्या करना, परीक्षा करना, और परीक्षा करके क्या करना है उसमें डूब जाना है, निर्वेदम आयात परीक्ष लोकान कर्म चितान, इसके बाद क्या कहा गया निर्वेदम आयात, उससे वैराग्य ले लो, अब वैराग्य लेकर के फिर कहां जाओ, गुरुमेवाभिगक्षेत, गुरु के पास जाओ, क्यों जाओ तत् विज्ञानार्थम, उस तत्व को जानने के लिए, जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष रहता नहीं, जिसके पाने के बाद कुछ पाना शेष रहता नहीं। अभी तो हम जहां जाते हैं जो चीज पाते हैं ना उससे आगे की चीज दिख जाती है, जहां भी पहुंचते हैं उससे आगे की चीज दिखती है, और दौड़ते दौड़ते सारा जीवन बिता देते हैं लेकिन कभी हमारी दौड़ कभी शांत होती ही नहीं है। तो शास्त्र का मतलब है कर्म में जाना और फिर कर्म में जाकर के कर्म की दौड़ को छोड़ देना, कर्म में जाना कर्म और कर्म के फल की दौड़ को छोड़ना, छोड़ करके उपासना करना, उपासना माने चिंतन करना, उस ब्रह्म का चिंतन करना, उस ब्रह्म के चिंतन से तुम्हारा अंतःकरण शांत होगा, विषय भोगों की विक्षेप की निवृत्ति होगी, चंचलता तुम्हारी समाप्त होगी, उस चंचलता के समाप्त हो जाने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, अज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो वेद का लक्ष्य कर्म में फंसाना नहीं है बल्कि कर्म में ले जाकर के कर्म से निकालना है। अरे भाई कभी आप देखना, जैसे शास्त्र में कहा पशु हिंसा कोई व्यक्ति दिन रात कर रहा हो तो शास्त्र ने कहा कि तुम्हें हिंसा ही करनी है तो यज्ञ के माध्यम से पशु बलि दो, कोई यज्ञ करो उस यज्ञ में किसी पशु की बलि दो। अब आपने सोच लिया शास्त्र हमें आज्ञा दे रहा है कि यज्ञ करके पशु बलि दें, तो शास्त्र का लक्ष्य पशु बलि कराना नहीं था, शास्त्र का लक्ष्य क्या था, किसी भी माध्यम से पशु बलि को रोकना था। अब यज्ञ कराने के लिए आपको कम से कम 1,00,000 रूपये चाहिए, कम से कम, अब 1,00,000 रूपये यज्ञ के लिए इकट्ठा करो, 25 साल में 10 साल में इतना यज्ञ कराना आसान नहीं है। एक पशु मारोगे, इस अभी तक रोज जो पशु मारते थे, अब वहां उस सास ने एक मर्यादा बांध लिया, उस मर्यादा के अनुसार अब कम से कम एक आयक नहीं आया। अब आपने ये तो शास्त्र के भाव को नहीं समझा, बल्कि उल्टा ही शास्त्र का मतलब निकाल लिया कि शास्त्र ने कह दिया कि उस दिन मारना है, उस दिन हमें वो करना, जैसे आजकल हुआ बकरीद। जबकि शास्त्र का अर्थ बकरे को मारना नहीं था, सही बता रहा, पशु को मारना शास्त्र नहीं था, शास्त्र का लग, बल्कि पशु मानेगा जो पास है, जो बंधन है, उस बंधन को मारना था, लेकिन हम उस बंधन को न मार करके पशु को मारना शुरू कर दिया। भाई हमारे पास कुछ न कुछ बंधन है, नहीं बंधन है, कुछ पास है, कुछ बंधन है, उन बंधनों की हम निवृत्ति करें। और बंधनों में सबसे बड़ा बंधन है मैं का बंधन, अहंकार का बंधन। अब मैं का प्रतीक बेचारा कौन है, बकरी अथवा मैं कैसे चिल्लाती बकरी, मैं तो अपने उस मैं को मारना लक्ष्य था, लेकिन उस मैं को तो नहीं मारा, और उस मैं का प्रतीक रूप जो पशु था करूंगा, उसी पशु को हमने हत्या कर डाली। तो शास्त्र का लक्ष्य, महापुरुषों का लक्ष्य किसी अपना, अच्छा प्री से प्री वस्तु, वहां भी एक लक्ष्य बताया, प्री से प्री वस्तु का बलि दो, यही तो लक्ष्य है। तो प्री से प्री वस्तु कौन था, स्वयं है, ध्यान देना। वहां तो उसने सोचा शायद, क्या नाम है मोहम्मद साहब, क्या नाम था, तो प्री से प्री तो मेरा बेटा है, तो कि बेटे को करें, तो हाथ से तलवार क्या हुई, छूट गई। तो प्री से प्री बेटा भी नहीं है, अपने मैं के लिए हम बेटे का भी क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, अपने मैं के लिए अपनी पत्नी का भी हम त्याग कर देते हैं। तो सबसे बड़ा यहां तक अपनी मैं के लिए इस शरीर का भी हम त्याग कर देते हैं। तो अपने उस मैं को मारो, मैं माने जो अभिमान है, अहंकार है, उस अहंकार का नाश करना चाहिए। लेकिन शास्त्र के इस तात्पर्य को हम समझते नहीं हैं। अब बस वो समझ ली, आजकल हो गया ना, बेटे का नाम क्या रख लो, नारायण है, और सारी जिंदगी क्या करो, पाप करो, और मृत्यु के समय हम नाम लेंगे किसका, नारायण का, और भगवान आएंगे और हमें यमराज के दूतों से बचा करके ले जाएंगे। यही तो आपने सुना, नहीं सुना बता, आप कभी भागवत पढ़ना, ऐसा भागवत में लिखा भी नहीं है, लेकिन आपने ऐसा समझ लिया है कि लिखा है। वहां देखो जो अजामिल था, ब्राह्मण तो था ही, मां बाप की सेवा करने वाला भी था, यज्ञ आदि कर्म करने वाला भी था अजामिल, बस संग दोष से, संसर्ग दोष से वह धर्म कर्म से च्युत होकर के कहां लग गया, पाप कर्म में लग गया। इन पाप कर्म में जाकर के भी उसको शांति नहीं थी ना, अशांति ही था, दुख होता था, और कभी कभी उसकी अंतरात्मा उसको कोसती थी, कहां अपने माता पिता को छोड़ करके, अपनी पतिव्रता पत्नी का त्याग करके, कहां मैं इसे डायन के जाल में फंसा, और सब धर्म कर्म से च्युत हो गया, अब न जाने कौन सा नरक मिलेगा। तो अंतर आत्मा उसकी उसको कचोटती थी नहीं थी, अंतर आत्मा कभी न कभी उसको धिक्कारती थी नहीं धिक्कारती थी। तो वहां बताया कि एक दिन लेटा हुआ था अजामिल, तो लेटे हुए एक सपना देखा, सपना देखा, वही कह रहा सपना देखा कि सत्य है, पता नहीं चला, एक भाव आया, सपना आया कि मौत आई मेरे ऊपर। अब मौत मेरे ऊपर आई तो मैंने अपने बेटे को देखा, नारायण नारायण चिल्लाया, और नारायण चिल्लाते ही कुछ धर्मराज के दूत आए, और दूत आए तो क्या किया उन्होंने, दोनों आपस में लड़े और मेरी जान बचाए, और जैसे मेरी जान बची तो मैं उठ के बैठ गया, नींद खुल गई। अब वो अजामिल खुद कहता था ये सपना था या सत्य था, क्या था पता नहीं, कभी कभी ऐसा सपना भी होता है कि सत्य की तरह दिखता है, लेकिन जो भी हो अजामिल नहीं निश्चय, जो भी हो सपना हो या सत्य हो, लेकिन स्वप्न में यदि नारायण का नाम लिया तो नारायण ने हमें मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, यदि जागृत में मैं उस नारायण का नाम लूंगा तो मेरा भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सही बताऊं, एक झटके में ही पत्नी पुत्र सबको क्या किया, छोड़ दिया और चला गया हरिद्वार में। एक कथा नहीं आप लोग जल्दी सुनते, चला गया कहां, हरिद्वार में किसी मंदिर में गया महात्मा बन करके। अब संसार की सारी वृत्तियों से ऊपर उठ करके नारायण का स्मरण करते करते वह नारायण स्वरूप ही हो गया। लेकिन ये बाद वाली साधना कोई नहीं बताता, बस नारायण का नाम ले लो और आपकी क्या हो जाएगी, मुक्ति, सारी जिंदगी पाप करो। और सच बताऊं नारायण अंत में नाम आएगा ही नहीं, ये भी बता दूं आपको। अच्छा, कभी कभी आप सोचना, हम कहते हैं भगवान भाव का भूखा होता है, अब यहां उसने जब नारायण का नाम लिया होगा तो नारायण का भाव रखा होगा कि बेटे का भाव रहा होगा? आप भगवान को किसी नाम से पुकारो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्की मिक्की पिंकी कुछ भी पुकारो, लेकिन भाव किसका रखना, नारायण का रखना। तो आपका पुकारा हुआ नाम है नहीं महत्व का है, आपके मन में आया हुआ भाव आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो शास्त्र के इस भाव को तो हम समझते नहीं हैं, और समझ न समझने के कारण ही शास्त्र के अर्थ का हम क्या कर लेते हैं, अनर्थ कर लिया करते हैं। तो मेरे भाई, शास्त्र के अर्थ का अनर्थ मत करो। नहीं तो गीता जी की भी देखो, अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह, है ना, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृति में आंति भूतानी निग्रह किम। अब संसार का विषय आदमी भोगी आदमी क्या करेगा, बोलो भाई, आंख का स्वभाव है रूप देखना, रूप देख रही है, जीभ का स्वभाव है रस लेना, तो प्रकृति में आंति भूतानी सब प्राणियों को उसकी अपना स्वभाव अपनी तरफ प्रवृत्त कर रहा है, निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करके तुम क्या करोगे, इंद्रियस्य राग द्वेषो व्यवस्थितो, ये तो कह दो इंद्रिया इंद्रियों के विषयों में, लेकिन आगे भी तो बताया तयोर न बसम आगक्षेत, ये नहीं बताएंगे, बस अपने काम का अर्थ निकाल लेंगे और बाकी अर्थों को छोड़ देंगे। तो भाई, आप शास्त्र की व्याख्या अपने अनुसार न करना, शास्त्र के एक भाव को, एक तात्पर्य को, एक लक्ष्य को समझना, तो आपको शास्त्र समझ में आएगा। और उसको समझने के लिए तो किसी न किसी गुरु के, संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। जैसे कल राम के रहस्य को बताया, नहीं बताया, बाली को छिप के क्यों मारा, राम क्यों रोए, भस्मासुर कौन था, बताया ना, भस्मासुर कौन था, देहाभिमानी ही व्यक्ति कौन है, भस्मासुर है। ये शास्त्रीय भावों को ना समझों को समझाने के लिए कोई न कोई रूपक दे करके, कोई न कोई एक भाव दे करके उनको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयोजन रखा गया था, लेकिन हम लोग उस लक्ष्य को तो पकड़ते हैं नहीं, बस नाम रूप जाति गुण क्रिया में ही उलझ करके रह जाते हैं। तो शास्त्र पहले कर्म का निरूपण करता है, कर्म के फल को भी बताता है, और बताने के बाद उस कर्म में भी दोष दिखा देता है। प्लवाहीयेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशो उक्त अवरम येषु कर्म, 18 जिस कर्म में अवयव है ऐसा यज्ञ रूपी जो कर्म है, वह कर्म ऐसी नाव है जो मजबूत नहीं है, आपको रास्ते में डुबाने वाली ही नाव है। इसलिए जो व्यक्ति कल्याण चाहता है, जन्म और मृत्यु के पार जाना चाहता है, वह व्यक्ति इन कर्मों से भी ऊपर उठ करके ज्ञान रूपी नाव पर ही सवार होकर के मुक्ति को प्राप्त करता है। कर्म रूपी नाव कैसी है, अदृढ़ है, मजबूत नहीं है, कमजोर है, वह नाव डुबाने वाली ही है। इसी भाव को लेकर के शरद कुमार अगला मंत्र बताते हैं, सातवां। तस्सैव नामाद विशेष रूपैः इदं जगत भाति महानुभावः। तस्सैव नामाद विशेष रूपैः इदं जगत भाति महानुभावः। निर्दिश्य सम्यक् प्रवदन्ति वेदाः तद विश्व वैरूप्य मुदाहरन्ति। निर्दिश्य सम्यक् प्रवदन्ति वेदाः तद विश्व वैरूप्य मुदाहरन्ति। स्ववैरूप्य मुदाहरन्ति तस्य परमात्मनः एव। तस्य माने उसका, उसका माने किसका, परमात्मा का ही। नाम आदि विशेष रूपई है, माया से कल्पित नाम आदि, आदि से नाम रूप जाति गुण और क्रिया, इन विशेषणों से इदम जगत भाति, इन विशेषणों से युक्त होकर के उस परमात्मा का ही इस रूप में प्रतीत हो रहा है। तस्यैव उस परमात्मा का ही प्राकट्य है। किस रूप में, नाम रूप जाति गुण क्रिया, इन विशेषणों से विशिष्ट होकर के वह परमात्मा ही इस जगत के रूप से प्रतीत हो रहा है। भाई अखबार सूत ही, पगड़ी कुर्ता पायजामा गमछा रुमाल टोपी दुपट्टा साड़ी मोजे आदि रूप से अव्यक्त हो रहा, प्रकट हो रहा है। यदि कहें तो कोई आश्चर्य है क्या? यही कह रहे हैं कि तस्यैव उस परमात्मा का ही, तस् माने उस परमात्मा का ही प्राकट्य जगत के रूप में हो रहा है। तो जगत क्या है, नाम आदि विशेष रूपई है, नाम आदि विशेष, नाम आदि विशेषणों से विशिष्ट जो जगत है ना, उस जगत के रूप में उस परमात्मा का ही अनुभव हो रहा है। हे महानुभाव, तो इस जगत का निरूपण करते हुए, इस जगत का कथन करते हुए निर्दिष्ट सम्यक जगत में नहीं उलझा रहे हैं, बल्कि इस जगत का जो अधिष्ठान है, जिसके नाम रूप हैं, उसका ही निर्देश करके वेद कथन करते हैं। निर्दिष्ट सम्यक प्रवदन्ति वेदा, वेद सम्यक माने अच्छी प्रकार से उस पर जगत के रूप से उस परमात्मा का ही निर्देशन कर रहे हैं। जगत के रूप से जगत का निर्देशन नहीं हो रहा है, जगत के रूप से किसका निर्देशन चल रहा है, उस परमात्मा का निर्देशन कर रहे हैं। क्योंकि भाई उस परमात्मा को पकड़ने के लिए कोई न कोई आलंबन तो चाहिए चाहिए, तो उस आलंबन के माध्यम से उस आलंबन का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान का ही निरूपण कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस अध्यस्थ को ही पकड़ लेते हैं, अधिष्ठान तक हम पहुंचे। भाई कभी द्विज का चांद देखा नहीं आप लोगों ने? न देखा हो तो बहुत सूक्ष्म होता, दिखता भी नहीं है। तो कैसे दिखाते हैं लोग, ओ पेड़ की डाल को देखना। क्या देखना है, पेड़ की डाल को। अब आपको पेड़ की डाल नहीं दिखाना है मेरे को, चांद का पेड़ की डाल से कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन उस डाल को देख करके फिर कहते हैं उस डाल के सीधे आगे बढ़ना है, तो आपको चांद है? तो डाल को छोड़ देना है, डाल को क्या करना है, छोड़ देना है। छोड़ करके उस डाल के सीधे में या डाल के माध्यम से जिसको हम दिखाना चाहते हैं, मतलब जो दिशा निर्देश है उसको पकड़ना है। भाई छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो माताएं क्या कहती है, स्कूल जाएगा ना तो तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगी। अब बताओ माता को चॉकलेट खिलाने का प्रयोजन है या स्कूल भेजने का प्रयोजन है? लेकिन बच्चा यही समझ ले कि हमें चॉकलेट ही, कि स्कूल जाना है तभी जब चॉकलेट ही मिलेगा, और सारी जिंदगी चॉकलेट खाने के लिए स्कूल जाए, बताओ उस बच्चे का कभी विकास हो सकता है क्या? चॉकलेट खिलाना एक उसका क्या था, प्रयोजन नहीं था, चॉकलेट के माध्यम से स्कूल भेजना, यहां प्रसाद खिलाना, हम लोग प्रसाद खिलाते ना मेला वाला में बच्चे को, कम से कम इसी बहाने सत्संग में ले आना प्रयोजन था। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चे के लिए प्रसाद की व्यवस्था आश्रमों में की गई थी, नए साधकों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब बूढ़े बूढ़े साधक भी धक्के मुक्की ले लेके लाइन लगाते हैं ना जरा सा किसके लिए, प्रसाद के लिए, तो सही बताओ बड़ा दुख हो जाता है। वो भी कहते प्रसादे सारे दुखा नाम हानि रस्य उपजाए थे, प्रसाद से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो कौन सा प्रसाद? एक घंटे जो प्रसाद खिलाया गया है उस प्रसाद की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। कौन से प्रसाद की? दो अंगूर, दो एक सेब, एक दोना हलवा, इसमें कितनी हाय तोबा, कितनी लगाइयां, कितनी राग द्वेष, कितनी छीना झपटी कि दौड़ो दौड़ो कहीं खत्म न हो जाए, कोई दूसरा न ले लेवे। इतनी उम्र होने के बावजूद भी, इतनी सत्संग सुनने के बावजूद भी यदि हमारी वही दौड़ है, बताओ आप प्रसाद का भी मतलब समझ में आया क्या? लेकिन आज भी हम उसी प्रसाद में अटके हुए हैं। कौन सा प्रसाद? जो खाते हो और सुबह गायब हो जाता है, उस प्रसाद की हम चर्चा ही नहीं करते हैं, जो प्रसाद कभी समाप्त होने वाला होता नहीं। तो उस तत्व ज्ञान ही लक्ष्य था, वो प्रसाद खिलाना मंदिरों का लक्ष्य नहीं था। मंदिरों का लक्ष्य मात्र क्या था? प्रसाद के माध्यम से लोगों को क्या करना, तीसरे माले पर पहुंचा देना, और तीसरे माले में पहुंच करके एक घंटे का सत्संग सुन करके अपना भला कर लेना, ये उस प्रसाद का क्या था, प्रयोजन। लेकिन हम सारी जिंदगी कथा सुने लेकिन रह गए कहां, उसी प्रसाद में रह गए, तो समझ लेना कभी हमने कुछ सुना ही नहीं। तो वेद का एक तात्पर्य समझना, निर्दिष्ट सम्यक प्रवदंत वेदा, वेदा उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही निर्देश करके इस जगत का निरूपण कर रहे हैं। कैसे निरूपण करते हैं? विश्व वैरूप्यम उदाहरंती, विश्व से वैरूप माने अलग ही वह ब्रह्म है, विश्व से नाम रूप जाति गुण क्रिया से वैरूप माने विलक्षण ही वह ब्रह्म है। उसी ब्रह्म का निरूपण करने के लिए ये इन वेदों का एक तात्पर्य है, वेदों का एक लक्ष्य है। जिसे आपने गीता जी में पढ़ा ने, उद्धमूला मदह शाख अस्वत्थम प्राहु रव्यम छंदांश यस्य परणानी, सीधे का वेद भी कहते हैं, वेद ही जिसके क्या है पत्ते हैं, अर्थात वेदों से ही इस संसार का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, वेदों से ही सत्कर्मों से संसार क्या है शोभित हो रहा है। वेदांश यस्य छंदांश यस्य परणानी, और क्या है, यस्तम वेद सवेदवित है, तो बड़ी प्रशंसा हो गई, हुई नहीं हुई। लेकिन आगे तुरंत डंडा मारा, क्या मारा, न रूपमस्य तथा उपलब्धते नान्तो न चादि न च सम प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनम सुब्रूढ मूलम, आगे असंग शस्त्रेण छित्वा, लेकिन हम तो काटते ही नहीं हैं, ये वेद रूपी, वेद का विस्तार रूपी जो संसार है ना, इस संसार में उस पक्षी की तरह हम क्या करते हैं, रस लेते हैं। वहां बताए ये आपका परिवार, उनकी चहचहाहट, इनकी खुशबू, ये संसार रूपी वृक्ष के क्या हैं, पक्षी हैं, क्या उस वृक्ष पर बैठ करके आपको रस आने लगा क्या? तो रस न आने, न रूप मस्से है तथोपलब्धते, जिस प्रकार से संसार दिख रहा है ना, वास्तव में संसार का ऐसा स्वरूप है ही नहीं। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, ये संसार पहले भी नहीं था, बीच में व्यक्त हो रहा है, बाद में भी नहीं रहेगा। तो जिस समय अव्यक्त हो रहा है ना, उस काल में भी उसकी सत्ता है ही नहीं। नान्तो न चादिन न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थ मेनम, कल तक रहेगा अस्वत्थ, कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी नहीं, अस्वत्थ मेनम कल तक रहेगा नहीं रहेगा कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी ऐसा संसार की भी जड़ें बहुत ही गहरी हैं, हम सब जानते हुए भी संसार को कहां उखाड़ पा रहे हैं बताओ, संसार को हम कहां छोड़ पा रहे हैं बताओ। किसी न किसी रूप में संसार का स्वरूप बदल गया है, लेकिन किसी न किसी रूप में संसार में आज भी हम उलझे हुए हैं। संसार का स्वरूप बदल गया लेकिन संसार तो अब भी है ही, वो भी संसार, ये भी संसार है, सारा संसार ही संसार है। तो इस संसार को छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, असंग सस्ते है, ये भी कहां संसार को छोड़ के भागोगे, भाग भी नहीं पाओगे, जहां जाओगे वहीं। अरे भाई यहां घर की पत्नी पति दुख देते हैं, और जंगल में जाओगे ना, कभी आप लोग जंगल गए नहीं गए हैं, सियार रात भर हा, सियारों की भी कंपटीशन होता है, एक सियार इधर बोलेगा दूसरा उधर बोलेगा तीसरा उधर बोलेगा, रात भर सियार की आवाज सुनोगे, सुबह 4 बजे पक्षी कूंकाक करना शुरू कर देते हैं, वहां भी अशांति है। तो असंग सस्ते हैं, संसार से पूरी तरह से क्या हो जाओ, असंग हो जाओ, पत्नी पुत्र शरीर सबसे क्या हो जाओ, असंग हो जाओ, असंग सस्ते हैं दिने चित्वा। फिर क्या करें, बोलो भाई संसार छोड़ दिया तो हो गया धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, तब बताया ततः पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे। तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का अनुसंधान करो यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जिस पद पर पहुंचने के बाद फिर से आना होता नहीं। लेकिन हम लोग ने बस नाम रूप में इसे उलझ जाते हैं कि उस अधिष्ठान को, उस तत्व को जिसके ऊपर उसकी सत्ता टिकी हुई है हम देखें। और हम सबकी यही स्थिति है, अजमा लो। आज लोग सुबह सुबह आए होगे, शीशा देख के आए होगे, नहीं आए हो बताओ, आए थे ना शीशा देख के, तो बताओ आपको शीशा दिखा था, तस्वीर दिखी थी बताओ, झूठ नहीं बोलना एकदम। हम थे, हमारे सामने क्या था, शीशा, शीशा माने दर्पण था। तो जिस समय मैं दर्पण देख रहा था तो आप दर्पण दिख रहा था कि तस्वीर दिख रही थी, आपको दर्पण नहीं दिखा था, जबकि वो तस्वीर किसके ऊपर टिकी थी, दर्पण के ऊपर टिकी थी, लेकिन दर्पण किसी को नहीं दिखा, क्या दिखा, तस्वीर दिखी। उसी प्रकार से मेरे भाई इस संसार में भी जिसके ऊपर ये सारा संसार टिका हुआ है वह परमात्मा किसी को दिखता ही नहीं है, और दिखता है तो क्या दिखता है, ये तस्वीर ही दिखती है, तस्वीर का जो अधिष्ठान है ब्रह्म है वह हमें दिखाई देता ही नहीं है। स्वामी जी का एक, त्यागमूर्ति जी महाराज का एक बहुत प्यारा दृष्टांत था, वो कई बार समझाते थे, कहते थे कि उनको अध्यक्ष बना जाता है, ये लोग अध्यक्ष बनाते थे ना बड़े महाराज जो, तो जब बड़े महाराज को अध्यक्ष बना जाता है तो बड़े महाराज थोड़ा मजाकी स्वभाव भी, मजाक भी बड़े धीरे से कर लेते थे, भाई अध्यक्ष इसको बनाया जाता है जिसको बोलने का समय न दिया जाए, क्योंकि हर महात्मा इतना टाइम बढ़ा देता है कि 12 बजे कथा का समापन होना है तो अध्यक्षीय भाषण कितने बजे होता है, 12 बजे ही शुरू होगा, बताओ क्या करें। तो अब बॉम्बे वाले तो कथा समय के पाबंद हैं, क्या करें, इनकी मजबूरी है, बाहर ड्राइवर कार लेके आ गया है, बेटा कार लेके आ गया है, पार्किंग है नहीं, तो सब उठना शुरू हो गए। तो महाराज जी ने कहा भाई सब लोगों ने कथा सुना ठीक है, ब्रह्म की चर्चा हुई, लेकिन ब्रह्म का साक्षात्कार यदि करना हो तो आप बैठ जाओ, नहीं जिसको जाना हो चला जाए। तो जो जा रहा था वो सबके सब क्या गए, वापस आ गए। तो कहा भाई आपको क्या दिख रहा है मेरे बता दो, सामने देखो क्या दिख रहा है। तो सब ने बताया आपकी तस्वीर, माइक, फूल, पैसा, किताब, चश्मा, कहा सबसे पहले क्या देखा है, तो सबने कुछ कुछ बताया, कोई लाल रंग कोई कुछ। कहा भाई जिसके प्रकाश में यह सब कुछ दिख रहा है वह प्रकाश कभी दिखा है आपको? आपकी आंखों के पहले सबसे पहले क्या आया? प्रकाश आया। यदि लाइट बंद कर दो तो कुछ दिखेगा क्या? लाइट ऑन किया है तो सबसे पहले क्या देखा? प्रकाश। अप्रकाश के बाद क्या दिखा? फूल पत्ता। लेकिन प्रकाश को जिसके प्रकाश से सब दिख रहा है वह प्रकाश कभी किसी को दिखता? तो जिसकी सत्ता से आंखें रूप देखती हैं, जिसकी सत्ता से कान शब्द सुनता है, जिसकी सत्ता से शरीर चल रहा है, जिसकी सत्ता से भोजन पच रहा है, जिसकी सत्ता से सब लोग व्यवहार करने में सक्षम हो रहे हैं, वह परमात्मा किसी को दिखता ही नहीं है। तो जिसकी सत्ता से सब हो रहा है वही तो परमात्मा है। तो उसके ये हटा दो, किसको? बल्ब को हटा दो, इसके लाल पीले प्रकाश को हटा दो, बिजली को पकड़ लो, पंखे को हटा दो, किसको पकड़ लो? बिजली को पकड़ लो। बिजली की सत्ता न हो, पावर न होवे तो कुछ होगा क्या? तो हमारे भीतर जो भी एक्टिविटीज क्रिया हो रही है वह क्रिया किसके कारण हो रही है? उस परमात्मा के ही कारण हो रही है। तो उस परमात्मा को पकड़ लो, और व्यक्ति कौन क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, रूप क्या है, मतलब काले रूप को भी वही सत्ता दे रहा है और गोरे रूप को भी। लेकिन आप लोग ना काले में द्वेष कर लेते हो और गोरे में राग कर लेते हो, लेकिन दोनों के भीतर सत्ता देने वाला कौन है? वही तो है मेरे भाई क्रिया। किसी का अंतःकरण सत्वगुण प्रधान है तो तप जप पूजा कर रहा है, किसी का अंतःकरण रजोगुण प्रधान है तो दिन रात काम में राजा बना हुआ काम कर रहा है, किसी का अंतःकरण तमोगुण प्रधान है तो सो रहा है, आलस्य प्रमादी बना हुआ है। लेकिन तीनों को सत्ता देने वाला कौन है? ये भी बता दो, संसार में सृष्टि चलाने के लिए तीनों को कुछ चाहिए भाई? आपको नींद चाहिए नहीं चाहिए बताओ? आपको तमोगुण न आवे, 24 घंटे काम करते जाओ तो पागल हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? तो सृष्टि में तमोगुण भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए और साथ साथ सत्वगुण भी चाहिए। तो सृष्टि में कोई चीज निरर्थक है ही नहीं, इसलिए उनकी क्रियाओं से हट करके उनको सत्ता देने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा को पकड़ लो। नाम रूप जाति, और जाति माने हम मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये भी एक जाति है, तो इसको भी छोड़ दो। लेकिन मनुष्य पशु के भीतर भी जो सत्ता देने वाला है वह सब में एक ही है। तो इन नाम रूप जातियों को छोड़ करके किसको पकड़ना है? उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही निर्देशन करना है, इसके माध्यम से। ये हमारे वेदों का लक्ष्य है। जब तक इन वेदों के यथार्थ लक्ष्य को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम इन्हीं में उलझते हुए किसी से राग करेंगे, किसी से, और राग द्वेष का फल क्या होगा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। क्योंकि जहां राग करते हैं ना, तो उसके प्रति हम कुछ न कुछ कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो उस कर्म का कुछ न कुछ कर्मोदय, कर्म फलानुराग है। कर्म करोगे तो कर्म के फल से अनुराग हो जाएगा, और उस कर्म के फल के पीछे पीछे हम एक लोक से दूसरे लोक में जाएंगे, न तरंत मृत्यु, हम मृत्यु का अतिक्रमण कर नहीं पाएंगे। इसलिए इन राग द्वेष को छोड़ करके सद अर्थ उस परमात्मा को पकड़ लो, परमात्मा की सत्ता में हमारी अवस्थिति हो जाए तो हम जीवन मृत्यु के प्रवाह से मुक्त हो जाएंगे। इसी भाव को भी दो श्लोक और बताएंगे, इस पे चर्चा हम लोग। एक प्रश्न है, एक जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है कि एक जन्म होता है? बोलो भाई, पुनर्जन्म होता है कि एक ही जन्म होता है? शास्त्र कहता है एक भी जन्म नहीं होता, अभी भी जन्म नहीं हुआ है। तो इन सब का भी रहस्य शास्त्र क्यों पुनर्जन्म की कल्पना करता है, क्यों एक जन्म की कल्पना करता है, इस पे भी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।